समय का सदुपयोग। जीवन का महल समय की घंटे मिनटों की ईंटों से चिना गया है। यदि हमें जीवन से प्रेम है तो यही उचित है कि समय को व्यर्थ नष्ट न करें। मरते समय एक विचारशील व्यक्ति ने अपने जीवन के व्यर्थ ही चले जाने पर अफसोस प्रकट करते हुए कहा था, मैंने समय को नष्ट किया, अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। खोई दौलत फिर कमाई जा सकती है, भूली हुई विद्या फिर याद की जा सकती है, खोया हुआ स्वास्थ्य चिकित्सा द्वारा लौटाया जा सकता है, पर खोया हुआ समय किसी प्रकार नहीं लौट सकता, उसके लिए केवल पश्चाताप ही शेष रह जाता है। जिस प्रकार धन के बदले में अभीष्टित वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, उसी प्रकार समय के बदले में विद्या, बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, आरोग्य, सुख, शांति, मुक्ति आदि जो भी वस्तु रुचिकर हो खरीदी जा सकती है। ईश्वर ने समय रूपी प्रचुर धन देकर मनुष्य को पृथ्वी पर भेजा है और निर्देश दिया है कि वह इसके बदले में संसार की जो भी वस्तु रुचिकर समझे खरीद लें। किंतु कितने व्यक्ति हैं जो समय का मूल्य समझते और उसका सदुपयोग करते हैं। अधिकांश लोग आलस्य और प्रमाद में पड़े हुए जीवन के बहुमूल्य क्षणों को यूं ही बर्बाद करते रहते हैं। एक एक दिन करके सारी आयु व्यतीत हो जाती है और अंतिम समय वे देखते हैं कि उन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, जिंदगी के दिन यूं ही बिता दिए। इसके विपरीत जो जानते हैं कि समय का नाम ही जीवन है, वे एक एक क्षण को कीमती मोती की तरह खर्च करते हैं और उसके बदले में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हर बुद्धिमान व्यक्ति ने बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा परिचय यही दिया है कि उसने जीवन के क्षणों को व्यर्थ बर्बाद नहीं होने दिया। अपनी समझ के अनुसार जो अच्छे से अच्छा उपयोग हो सकता था, उसी में उसने समय को लगाया। उसका यही कार्यक्रम अंततः उसे इस स्थिति तक पहुंचा सका जिस पर उसकी आत्मा संतोष का अनुभव करे। प्रतिदिन एक घंटा समय यदि मनुष्य नित्य लगाया करे तो उतने छोटे समय से भी वह कुछ ही दिनों में बड़े महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर सकता है। एक घंटे में 40 पृष्ठ पढ़ने से महीने में 1200 पृष्ठ और साल में करीब 15,000 पृष्ठ पढ़े जा सकते हैं। यह क्रम 10 वर्ष जारी रहे तो 1.5 लाख पृष्ठ पढ़े जा सकते हैं। इतने पृष्ठों में कई 100 ग्रंथ हो सकते हैं। यदि वे एक ही किसी विषय के हों तो वह व्यक्ति उस विषय का विशेषज्ञ बन सकता है। एक घंटा प्रतिदिन कोई व्यक्ति विदेशी भाषाएं सीखने में लगावे तो वह मनुष्य निःसंदेह 30 वर्ष में इस संसार की सब भाषाओं का ज्ञाता बन सकता है। एक घंटा प्रतिदिन व्यायाम में कोई व्यक्ति लगाया करे तो अपनी आयु को 15 वर्ष बढ़ा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रख्यात गणित के आचार्य चार्ल्स फास्ट ने प्रतिदिन एक घंटा गणित सीखने का नियम बनाया था और उस नियम पर अंत तक डटे रहकर ही इतनी प्रवीणता प्राप्त की। ईश्वरचंद्र विद्यासागर समय के बड़े पाबंद थे। जब वे कॉलेज जाते तो रास्ते के दुकानदार अपनी घड़ियां उन्हें देखकर ठीक करते थे। वे जानते थे कि विद्यासागर कभी एक मिनट भी आगे पीछे नहीं चलते। एक विद्वान ने अपने दरवाजे पर लिख रखा था, कृपया बेकार मत बैठिए, यहां पधारने की कृपा की है तो मेरे काम में कुछ मदद भी कीजिए। साधारण मनुष्य जिस समय को बेकार की बातों में खर्च करते रहते हैं, उसे विवेकशील लोग किसी उपयोगी कार्य में लगाते हैं। यही आदत है जो सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को भी सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचा देती है। माजार्ट ने हर घड़ी उपयोगी कार्य में लगे रहना अपने जीवन का आदर्श बना लिया था। वह मृत्यु शया पर पड़ा पड़ा भी कुछ करता रहा। रैक्यूम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ उसने मौत से लड़ते लड़ते पूरा किया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और प्रोटेक्टरेट के मंत्री का अत्यधिक व्यस्त उत्तरदायित्व वहन करते हुए मिल्टन ने पेराडाइज लास्ट की रचना की। राजकाज से उसे बहुत कम समय मिल पाता था, तो भी जितने कुछ मिनट वह बचा पाता उसी में उस काव्य की रचना कर लेता। ईस्ट इंडिया हाउस की क्लर्की करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने सर्वोत्तम ग्रंथों की रचना की। गैलीलियो दवा दारू बेचने का धंधा करता था तो भी उसने थोड़ा थोड़ा समय बचाकर विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार कर डाले। हेनरी किरक वॉट को सबसे बड़ा समय का अभाव रहता था, पर घर से दफ्तर तक पैदल आने और जाने का समय सदुपयोग करके उसने ग्रीक भाषा सीखी। फौजी डॉक्टर बनने पर अधिकतर समय घोड़े की पीठ पर बीतता था। उसने उस समय को भी व्यर्थ न जाने दिया और रास्ता पार करने के साथ साथ उसने इटालियन और फ्रेंच भाषाएं भी पढ़ ली। यह याद रखने की बात है कि परमात्मा एक समय में एक ही क्षण हमें देता है और दूसरा क्षण देने से पूर्व उस पहले वाले क्षण को छीन लेता है। यदि वर्तमान काल में उपलब्ध क्षणों का हम सदुपयोग नहीं करते तो वे एक एक करके छीनते चले जाएंगे, अंत में खाली हाथ ही रहना पड़ेगा। एडवर्ड बटलर लिटन ने अपने एक मित्र को कहा था, लोग आश्चर्य करते हैं कि मैं राजनीति तथा पार्लियामेंट के कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हुए भी इतना साहित्यिक कार्य कैसे कर लेता हूँ। 60 ग्रंथों की रचना मैंने कर ली, पर इसमें आश्चर्य की बात नहीं, यह नियंत्रित दिनचर्या का चमत्कार है। मैंने प्रतिदिन 3 घंटे का समय पढ़ने और लिखने के लिए नियत किया हुआ है। इतना समय मैं नित्य ही किसी न किसी प्रकार अपने साहित्यिक कार्यों के लिए निकाल लेता हूँ। बस इस थोड़े से नियमित समय ने ही मुझे हजारों पुस्तकें पढ़ डालने और 60 ग्रंथों के प्रणयन का अवसर ला दिया। घर गृहस्थी के अनेक झंझटों और बाल बच्चों की सास संभाल में दिन भर लगी रहने वाली महिला हैरियट बीचर स्टोन ने गुलाम प्रथा के विरुद्ध आग उगलने वाली वह पुस्तक टॉम काका की कुटिया लिखकर तैयार कर दी, जिसकी प्रशंसा आज भी बेजोड़ के रूप में की जाती है। चाय बनाने के लिए पानी उबालने में जितना समय लगता है, उसमें व्यर्थ बैठे रहने के बजाय लॉन्गफेलो ने इन्फरल नामक ग्रंथ का अनुवाद करना शुरू किया और नित्य इतने छोटे समय का उपयोग इस कार्य के लिए नित्य करते रहने से उसने कुछ ही दिन में वह अनुवाद पूरा कर लिया। इस प्रकार के अगणित उदाहरण हमें अपने चारों ओर बिखरे हुए मिल सकते हैं। हर उन्नतिशील और बुद्धिमान मनुष्य की मूलभूत विशेषताओं में एक विशेषता अवश्य मिलेगी, समय का सदुपयोग। जिसने इस तथ्य को समझा और कार्य रूप में उतारा उसने ही यहाँ आकर कुछ प्राप्त किया है, अन्यथा तुच्छ कार्यों में आलस्य और उपेक्षा के साथ दिन काटने वाले लोग किसी प्रकार सांसें तो पूरी कर लेते हैं पर उस लाभ से वंचित ही रह जाते हैं जो मानव जीवन जैसी बहुमूल्य वस्तु प्राप्त होने पर उपलब्ध होनी चाहिए या हो सकती थी। समय की संपदा नष्ट न करें। समय अपनी गति से चल रहा है, चल ही नहीं रहा, भाग रहा है। निरंतर गतिमान इस समय के साथ कदम मिलाकर चलने पर ही मानव जीवन की सार्थकता है। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है। पिछड़ना सफलता से दूर हटना है, उसकी ओर गतिशील होना नहीं। सुनते हैं कि मनुष्य की सांसें गिनी हुई हैं। एक श्वास के साथ जीवन की इस अमूल्य निधि की एक इकाई कम हो गई। एक एक करके इकाइयां कम होती जाएं तो जीवन की पूंजी एक दिन चुक जाती है। उस समय मृत्यु दूत बनकर लेने आ जाते हैं। उसके साथ जाते जाते व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो उसे ज्ञात हो जाता है कि उसने कितनी बेदर्दी से समय को गंवाया है या उसके एक एक क्षण का सदुपयोग किया है। संपदा का, विद्या का रोना सभी को रोते देखा है। कोई धन के अभाव में डहकी है तो किसी के पास ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, उसके लिए सिर पीट रहा है। समझ में नहीं आता कि यह हनुमान कब अपनी सामर्थ्य को समझेंगे तथा एक छलांग मारकर लंका पहुंच जाएंगे। विश्व की संपदा, विश्व का ज्ञान भंडार तो उनकी बाट जोह रहा है। समय जैसी मूल्यवान संपदा का भंडार भरा होते हुए भी जो विनिमय कर धन ज्ञान तथा लोकहित को नहीं पा सकते उनसे अधिक अज्ञानी किसे कहा जाए। समय अमूल्य है। समय को जिसने बिना सोचे समझे खर्च कर दिया वह जीवन पूंजी भी यूं ही गंवा देता है। यह पूंजी अपने आप खर्च होती है, आप कृपण बनकर उसे सोने चांदी के सिक्के की तरह जोड़कर नहीं रख सकते। यह गतिवान है, आप अपनी अन्य संपदाओं की तरह उस पर अधिकार जमा नहीं सकते। आपका उस पर स्वामित्व वहीं तक है कि आप उसका सदुपयोग कर लें। जिस व्यक्ति में समय को खर्चने की, उसका सदुपयोग करने की सामर्थ्य नहीं होती तो समय उसे खर्च कर देता है। दिन रात के 24 घंटे कम नहीं होते। इस समय को हम किस प्रकार व्यतीत करते हैं इसका लेखा जोखा करते चले तो हमें ज्ञात हो जाता है कि हम जी रहे हैं या समय को व्यर्थ गंवाकर एक प्रकार की आत्महत्या कर रहे हैं। अपनी इस प्राकृतिक धरोहर का अधिकांश मनुष्य समुचित सदुपयोग नहीं करते। बचपन में इतना ज्ञान नहीं होता कि इसका मूल्य समझें। खेलकूद तथा मित्रों व भाई बहनों के झुंड के साथ यूं ही इस संपदा को लुटाते चलते हैं। एक दिन यौवन आ खड़ा होता है, वह यौवन समय के बहुमूल्य वरदान के रूप में मिलता है। यह वह सामर्थ्य होती है जिसे यदि अधिक समय तक स्थायी बनाया जा सके, तन से मन से बूढ़े न हो जाएं तो गिनी हुई सांसों के इस जीवन में बहुत काम कर सकते हैं। इसे निर्दयता से खर्च कर देने पर बुढ़ापा अपनी कमजोर टांगों व धुंधली आंखों से हमारा स्वागत करता है, तब हम चौंक पड़ते हैं, निराश हो जाते हैं और सिर पर हाथ रखकर चिंताओं के सागर में डूब जाते हैं। भला जब यौवन काल में कुछ न कर पाए तो अब क्या कर सकेंगे? यह निराशा ही ले डूबती है। सच्चा व्यापारी तो वह होता है जो घाटा होने पर भी व्यापार बंद नहीं करता, धैर्य तथा बुद्धिमत्ता से पुनः अपने उखड़े पांव जमा लेता है। दो तिहाई जीवन बीत गया तो क्या हुआ, एक तिहाई तो बचा हुआ है, उसमें भी बहुत कुछ काम किया जा सकता है। प्रकृति ने किसी को अमीर गरीब नहीं बनाया, उसने तो सबको मुक्त हस्त से अपना अमूल्य वैभव लुटाया है। श्रम की सामर्थ्य तथा समय का अनुदान इन दो अस्त्रों से सुसज्जित करके उसने अपने सभी पुत्रों को जीवन के सम्रांगण में मस्तक पर तिलक कर विजयश्री वरण करने के लिए भेजा है। धन से महत्वपूर्ण है यह समय की संपदा। नौकरी करने वालों को महीने भर में वेतन मिलता है, यह वेतन धन के रुपयों के रूप में मिलता है। इस धन का पूरा पूरा उपयोग हो, इस उद्देश्य से जो व्यक्ति समझदार होते हैं वे बजट बनाते हैं। महीने भर में खाने पर कितना धन खर्च होगा निर्धारित किया जाता है। समय उससे भी मूल्यवान है, इसलिए विवेकी जन उसका भी उसी प्रकार बजट बनाते हैं, समय सारिणी बनाते हैं जिससे कि इसका अपव्यय न हो जाए। दिन भर के 24 घंटों में किस समय से किस समय तक क्या क्या काम होंगे, इस प्रकार की समय सारिणी बनाकर उस पर चलने से समय का सदुपयोग तो होता ही है, काम भी अधिक होता है तथा जीवन में सरसता बनी रहती है। जो उनका विभाजन नहीं करते वे दिन भर कोल्हू के बैल की तरह लगे भले ही रहें काम कम ही कर पाते हैं तथा अधिक समय तक एक ही काम करने से थकान तथा मानसिक अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जीवन का यह धर्रा थोड़े ही दिनों में व्यक्ति को निराश बना देता है। हमारा बहुमूल्य वर्तमान क्रमशः भूत बनता चला जा रहा है और हम यह देख समझ नहीं पाते कि प्रमाद द्वारा कितनी मूल्यवान संपदा का अपहरण किया जा सकता है। भूत के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत डरावना होता है। कहते हैं कि मरने के बाद अशांत व्यक्ति भूत बनता है। मरणोत्तर जीवन में क्या स्थिति होती है, कौन, क्यों और कैसे भूत बनता है और वह कैसा होता है, यह सब कुछ अभी रहस्य के गर्भ में है। अन्वेषण के उपरांत ही इस संदर्भ में कुछ सही निष्कर्ष निकलेंगे। समय की असामयिक और अशांत मृत्यु के उपरांत उसकी प्रतिक्रिया तथाकथित भूत से भी भयंकर होती है, इस तथ्य को सहज ही अनुभव किया जा सकता है। जीवन की सूक्ष्म सत्ता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति समय के रूप में ही सामने आती है। समय का किस प्रकार, किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया, इसी का लेखा जोखा जीवन मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। जो समय का महत्व और स्वरूप समझ सका और उसके सदुपयोग के लिए समग्र जागरूकता के साथ तत्पर हो गया, समझना चाहिए उसे जिंदगी मिल गई, अन्यथा इस ओर उपेक्षा बरतने वाले, अन्यमनस्क रहने वाले क्रमिक आत्महत्या ही करते चले जाते हैं। बहुमूल्य मणि मुक्ताओं को फटी थैली में भरकर चलने वाले राह में उन्हें टपकाते जाते हैं और घर पहुंचते पहुंचते उस निधि को गवाकर खाली हाथ रह जाते हैं। इसी प्रकार समय के साथ उपेक्षा करने वाले अपने आप के साथ एक क्रूर मजाक करते हैं। अपने भविष्य के साथ यह एक मर्मभेदी व्यंग है कि जीवन के बहुमूल्य क्षणों को ऐसे ही खोते गंवाते चला जाए। हम क्रमशः मर रहे हैं। जीवन की संपदा का एक एक दाना एक एक क्षण के साथ समाप्त होता चला जाता है। बूंद बूंद पानी टपकते रहने से भरा पूरा किंतु फूटा घड़ा कुछ ही समय में खाली हो जाता है। जीवन की रत्न संपदा हर सांस के साथ घटती चली जाती है। क्रमशः हमारा हर कदम मरण की ओर ही उठता है। आयु वृद्धि के साथ साथ मरण का दिन निकट से निकटतम आता चला जाता है। जो दैवी वरदान जैसा अमूल्य था, जिसके आधार पर कुछ भी खरीदा पाया जा सकता था, वह किस प्रकार गलता जलता, टूटता और मिटता चला जा रहा है, इसे देखने की न इच्छा होती है न फुर्सत। फलतः हमारा अनुपम अस्तित्व भूत बनता चला जाता है। इस प्रकार असामयिक मृत्यु की भयंकरता तथाकथित भूत प्रेतों से कम नहीं। जब समय के सदुपयोग और दुरुपयोग के परिणामों का तुलनात्मक अंतर किया जाता है, तब प्रतीत होता है कि तत्परता और उपेक्षा के बीच दिखने वाला नगण्य सा अंतर अंततः कितने भारी भिन्न परिणामों के रूप में सामने आता है। समय ही जीवन है, समय ही उत्कर्ष है, समय ही महानता के उच्चतम शिखर तक चढ़ दौड़ने का सोपान है। महाकाल की उपासना का जो स्वरूप समझ सका है, उसी को मृत्युंजय बनने का सौभाग्य मिला है और किसी के साथ भी मखौल किया जा सकता है, पर महाकाल के साथ नहीं। सिंह के दांत गिनने की धृष्टता किसी को नहीं करनी चाहिए। समय के दुरुपयोग की भूल अपने भाग्य और भविष्य को ठुकराने लतियाने की तरह है। जो समय गंवाया है, वह प्रकारांतर से अपने उत्कर्ष और आनंद का द्वार ही बंद करता है। मरण की दिशा में हम द्रुतागति से घिसते चले जा रहे हैं। खोने और गंवाने का दुर्भाग्य प्रमादियों के पल्ले बढ़ता है, पर जो जीवन संपदा से लाभान्वित होने के लिए जागरूक हैं, उसे सांसों के बहुमूल्य मणि मुक्तकों का ध्यान रहता है और वे एक घड़ी भी निरर्थक नहीं गंवाते। योजनाबद्ध दिनचर्या बनाते हैं और उस पर आरूढ़ रहते हैं। जानते हैं कि समय की संपदा को प्रमाद के शमशान में जलाने वालों को आत्म प्रताड़ना की आग में बेतरह जलना पड़ता है। समय का सदुपयोग करिए, यह अमूल्य है। मनुष्य जीवन में रुपए पैसों से भी अधिक महत्व समय का है। धन का अपव्यय निर्धन बनाता है, किंतु जिन्होंने समय का सदुपयोग करना नहीं सीखा और उसे आलस्य तथा प्रमाद में गंवाते रहते हैं, उनके सामने आर्थिक विषमता के अतिरिक्त नैतिक तथा सामाजिक बुराइयां और कठिनाइयां खड़ी हो जाती हैं। समय का उपयोग धन के उपयोग से कहीं अधिक विचारणीय है, क्योंकि उस पर मनुष्य की सुख सुविधा के सभी पहलू अवलंबित हैं। इसलिए हमें अर्थ अनुशासन के साथ साथ नियमित जीवन जीने का प्रशिक्षण भी प्राप्त करना चाहिए। जो समय व्यर्थ में ही खो दिया गया, उसमें यदि कमाया जाता तो अर्थ प्राप्ति होती, स्वाध्याय या सत्संग में लगाते तो विचार और सन्मार्ग की प्रेरणा मिलती। कुछ न करते केवल नियमित दिनचर्या में ही लगे रहते तो इस क्रियाशीलता के कारण अपना स्वास्थ्य तो भला चंगा रहता। समय के अपव्यय से मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य ही घटती है। कहना न होगा कि नष्ट किया हुआ वक्त मनुष्य को भी नष्ट कर डालता है। संसार का काल चक्र भी कभी अनियमित नहीं, लोक और दीपाल, पृथ्वी और सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रह वक्त की गति से गतिमान हैं। वक्त की अनियमितता होने से सृष्टि का कोई काम चलता नहीं, धरती में यही नियम लागू है। लोग समय का अनुशासन न रखें तो रेल, डाक, कल कारखाने, कृषि, कमाई आदि सभी ठप पड़ जाएं और उत्पादन व्यवस्था में गतिरोध के साथ सामान्य जीवन पर भी उसका कुप्रभाव पड़े। एक तरह से सारी सामाजिक व्यवस्था उथल पुथल हो जाए और मनुष्य को एक मिनट भी सुविधापूर्वक जीना मुश्किल हो जाए। जिस तरह अभी लोग भली प्रकार सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं, वैसे कदापि नहीं हो सकते। अतः हमको भी अपनी दिनचर्या को अपने जीवन कार्यों की आवश्यकतानुसार विभक्त करके उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। अपने कार्यों का वर्गीकरण 1 स्वास्थ्य, 2 धन और 3 सामाजिक सदाचार की दृष्टि से कीजिए और एक दिन के वक्त को इसी क्रम से बांटकर अपने लिए एक व्यवस्थित दिनचर्या बांध लीजिए और उसी के अनुसार चलते रहिए। इसी में आपकी सारी बातों का समावेश किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप जीवन क्रम चलता रहना चाहिए। इससे आप अधिक सुखमय जीवन जी सकेंगे। वैयक्तिक सुखोपभोग और सांसारिक कार्यों में क्षमतावान होने के लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य सुख जीवन की प्रमुख शर्त है, अतः उन सभी नियमों को प्राथमिकता दीजिए जिनसे आपका शरीर और मन स्वस्थ व सशक्त रहता है। हमेशा सूर्योदय से कम एक घंटा पहले उठा कीजिए और शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर कुछ टहलने या व्यायाम आदि की व्यवस्था बना लीजिए। प्रातःकाल की मुक्त वायु शरीर को शक्ति और पोषण प्रदान करता है, दिन भर देह स्फूर्ति और ताजगी से भरी रहती है। इस अवसर को गंवाना रोग और दुर्बलता को निमंत्रण देने से कम नहीं। जो लोग बिस्तरों में पड़े सोते रहते हैं, वे प्रातःकालीन ऊषीय रश्मियों निर्दोष वायु से वंचित रह जाते हैं और उनका शरीर सुस्त और निस्तेज हो जाता है। वे कोई भी कार्य आधी रुचि से करते हैं, तदनुकूल सफलता भी आधी ही मिलती है। दिन भर के कार्यों का अनुमानित आकार भी आप बिस्तर से उठते ही बना लीजिए और फिर उसमें परिश्रम पूर्वक लग जाया कीजिए। सफलता के लिए खींच या परेशानी मन में न आने देकर मस्ती पूर्वक सुबह से शाम तक काम में जुटे रहिए। यह क्रियाशीलता आपको रोगों और दुश्चिंताओं से दूर रखेगी। यह याद रखिए कि नियमित वक्त पर किया हुआ काम पूर्ण रूप से भली भांति संपन्न होता है और उसके पूरा हो जाने से आंतरिक उल्लास और प्रसन्नता की वृद्धि होती है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मनोबल तथा आत्मबल भी बढ़ता रहता है। इसी तरह सायंकाल को भी अपने उन सभी कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए जो दिन भर आपने किए हैं। उनमें से कोई ऐसा दिखे जिससे आपके शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता हो तो उसे आगे के लिए रोकने या कम करने का प्रयत्न कीजिए। सारांश यह है कि वक्त का विभाजन करते वक्त आप स्वास्थ्य की बात को भी ध्यान में रखिए और उसके प्रति बेपरवाह मत हो जाए। आप चाहें तो वक्त के सदुपयोग और व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा स्वयं ही स्वस्थ बने रह सकते हैं। कार्यों में इनका दुरुपयोग करके उसे आलस्य में भी खो सकते हैं, पर याद रखिए इस बात का ध्यान जितनी देर बाद में आएगा अपने आप को उतना ही पिछड़ा हुआ अनुभव करेंगे। यही बात उपार्जन के बारे में भी लागू होती है। शुभ और सुखी जीवन के लिए धन बहुत आवश्यक है। आर्थिक विषमता होने से दूसरे दैनिक कार्य भी कठिनाई से चल पाते हैं, इसलिए धनोपार्जन के लिए भी समय का उपयोग कीजिए। समय के गर्भ में लक्ष्मी का अक्षय भंडार भरा पड़ा है, पर उसे पाते वही हैं जो उसका सदुपयोग करते हैं। आपको जितना समय कार्यालय में काम करना पड़ता है उतने से ही संतोष नहीं हो जाना चाहिए। अपने लिए कोई अन्य रुचिकर घरेलू उद्योग चुनकर भी अपनी आय बढ़ाने का प्रयत्न होना चाहिए। जापान के नागरिक ऐसा ही करते हैं। वे छोटी मशीनों या खिलौनों के पुर्जे लाकर रख लेते हैं और अपने व्यावसायिक कार्य से फुर्सत मिलने पर नियमित रूप से कुछ वक्त उसमें भी लगाते हैं। इन कार्यों में वे अपने परिवार वालों का भी सहयोग लेते हैं और इस तरह वे अपनी बधी आय के लगभग बराबर आय पार्ट टाइम में कर लेते हैं। उनकी खुशहाली का सबसे बड़ा कारण वक्त का समुचित सदुपयोग ही कहा जा सकता है। स्वास्थ्य और धनोपार्जन के अतिरिक्त जो वक्त शेष रहता है उसका सदुपयोग समाज कल्याण के लिए करना चाहिए। वक्त का अभाव किसी के पास नहीं, पर अधिकांश व्यक्ति उसे बेकार के कार्यों में व्यतीत किया करते हैं। ताश, चौपड़, शतरंज, मटरगस्ती आदि में वक्त बर्बाद करने से शरीर और मन की शक्ति का पतन होता है। इस वक्त का सदुपयोग सामाजिक उत्थान के कार्यों में करना हमारा धर्म है। समय का महत्व अमूल्य है। उसके समुचित सदुपयोग की शिक्षा ग्रहण करें तो इस मनुष्य जीवन में स्वर्ग का सा सुखोपभोग प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यक है कि अपने वक्त को उचित प्रकार से दिन भर के कार्यों में बांट लें, जिससे जीवन के सब काम सुचारू रूप से होते चले जाएं। हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वक्त ही जीवन है। यदि हमें अपने जीवन से प्रेम है तो अपने वक्त का सदुपयोग भी करना चाहिए। हम अपना वक्त आलस्य और निरर्थक कार्यों में खर्च न करें। आलस्य दुनिया की सबसे भयंकर बीमारी है। आलस्य समस्त रोगों की जड़ है। उसे साक्षात मृत्यु कहें तो इसमें अत्युक्ति न होगी। अन्य बीमारियों से तो शरीर सारे मनुष्य जीवन को ही खा डालता है। आलस्य में पड़कर मनुष्य की क्रिया शक्ति कुंठित होने लगती है, जिससे न केवल शरीर शिथिल पड़ता है वरन आर्थिक आय के साधन भी शिथिल पड़ जाते हैं। हमारी जीवन व्यवस्था के लिए समय रूपी बहुमूल्य उपहार परमात्मा ने दिया। इसका एक एक क्षण एक एक मोती के समान कीमती है। जो इन्हें बटोर कर रखता है, सदुपयोग करता है, वह यहाँ सुख प्राप्त करता है। गंवाने वाले व्यक्ति के लिए वक्त ही मृत्यु है। वक्त के दुरुपयोग से जीवनी शक्ति का दुरुपयोग होता है और मनुष्य जल्दी ही काल के गाल में समा जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि समय का उपयोग सदैव सुंदर कार्यों में करें और इस स्वर्ग तुल्य संसार में 100 वर्ष तक सुखपूर्वक जिएं। समय जो गुजर गया फिर न मिलेगा। समर्थ स्वामी रामदास वक्त के सदुपयोग के बारे में बड़े महत्वपूर्ण शब्द कहा करते थे। एक सदैव पनाचय लक्षण रिकामा जाऊं ने दो एक क्षण दासबोध दी 11th of March 2024। अर्थात जो मनुष्य वक्त का सदुपयोग करता है, एक क्षण भी बर्बाद नहीं करता, वह बड़ा सौभाग्यवान होता है। धन और रुपए पैसे के मामले में यह कहा जाता है कि जिसका खर्च व्यवस्थित और मितव्ययी होता है वही जीवन पर्यंत धन का सुख लाभ प्राप्त करता है, उसके खजाने में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। ऐसे ही समय के प्रत्येक क्षण का उपयोग कर लेना भी मनुष्य की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। उन्नति की इच्छा रखने वालों को अपना समय कभी भी व्यर्थ न गंवाना चाहिए। समय के सदुपयोग करने में सदैव सावधान रहना चाहिए। आज जो समय गुजर गया, कल वह फिर आने वाला नहीं। कार्य चाहे व्यवहारिक हो अथवा पारमार्थिक, जो समय संबंधी विवेक और सावधानी नहीं रखते उन्हें